तो जब हम न्याय, इंसाफ या दुनिया के सही तरीके से चलने के बारे में सोचते हैं, तो हम इंसान अक्सर एक बहुत ही सीधी और साफ उम्मीद रखते हैं। मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम चाहते हैं कि न्याय में एक गणित जैसी सटीकता हो।
हाँ बिल्कुल, एक तरह का दो टूक हिसाब।
एकदम, इसे एक एक्सरे मशीन की तरह समझें। अगर हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे की फिल्म पर वो टूटी हुई सफेद रेखा बिल्कुल साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बस उसकी ओर इशारा करता है और कहता है कि हड्डी यहां से टूटी है और अब इसे ऐसे जोड़ा जाएगा।
कारण और परिणाम दोनों एकदम स्पष्ट।
सही कहा। हम चाहते हैं कि जीवन के दुख और सुख भी इसी तरह एक्सरे मशीन में साफ दिखाई दें। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं।
हमारे पास डॉक्टर जॉन वॉल्टन द्वारा बुक ऑफ जॉब के अध्याय 38 से 40 पर दिया गया एक बहुत ही गहरा व्याख्यान है।
और ये कोई साधारण व्याख्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब ईश्वर अंततः जोब को उत्तर देते हैं, तो वो न्याय और दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं को कैसे पलट देते हैं। ये ब्रह्मांड की जटिलता को समझने की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ।
एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां सही और गलत साफ हो। मतलब हम इंसानों को वैचारिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए हर चीज को स्पष्ट श्रेणियों में बांटना पसंद है।
हाँ, ताकि हमें ये महसूस हो कि हम दुनिया को समझते हैं।
एकदम, अगर कोई इंसान कष्ट में है तो हम तुरंत ये मान लेना चाहते हैं कि उसने कुछ गलत किया होगा। क्योंकि देखिए, अगर बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया एक सुरक्षित और अनुमान लगाने योग्य जगह है।
लेकिन तब क्या हो जब हम इस दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथों में से एक में कदम रखें और अचानक वो न्याय की एक्सरे मशीन ही काम करना बंद कर दे।
और यही इस ग्रंथ की खूबी है।
हाँ, मतलब हम एक ऐसे वैचारिक परिदृश्य में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ कारण, परिणाम, सजा और दुनिया के काम करने के तरीके पूरी तरह से धुंधले हो जाते हैं। डॉक्टर वॉल्टन का ये विश्लेषण हमारी उस स्थापित मान्यता को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है।
मैं तो कहूंगा कि वॉल्टन का यह विश्लेषण वास्तव में उस बिंदु पर प्रहार करता है जहां मानव बुद्धि की सीमाएं खत्म होती हैं और ब्रह्मांडीय वास्तविकता शुरू होती है।
यह सिर्फ एक प्राचीन पाठ की व्याख्या नहीं है,
तो ये क्या है?
ये मानव मनोविज्ञान के उस हिस्से का विखंडन है जो मानता है कि ब्रह्मांड हमारे चारों ओर घूमता है।
अरे वाह, और यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉब, जिसने अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना स्वास्थ्य सब कुछ खो दिया है, वो एक बहुत ही बुनियादी मांग कर रहा है।
हाँ, वो जवाब मांग रहा है। बिल्कुल, वो चाहता है कि उसे ईश्वर के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिले। वो एक अदालत चाहता है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि जॉब कटघरे में खड़ा है, अपने निर्दोष होने के सबूत पेश कर रहा है और बस इंतजार कर रहा है कि ईश्वर जज की कुर्सी पर बैठे और फैसला सुनाए।
यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जॉब की ये मांग पूरी तरह से उस सिद्धांत पर टिकी है जिसे प्रतिफल का सिद्धांत कहा जाता है।
प्रतिफल का सिद्धांत, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे।
एकदम सही। प्राचीन काल से लेकर आज तक ये सिद्धांत समाज का मुख्य आधार रहा है। जॉब के दोस्त इसी बात पर अड़े थे कि चूंकि वो भयानक पीड़ा से गुजर रहा है, इसलिए उसने निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा।
हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से बिना आग के धुआं नहीं उठता।
हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हर अच्छाई का इनाम मिलता है और हर बुराई की सजा। ये सुनने में बहुत ही तार्किक लगता है और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को नियंत्रण का एक झूठा एहसास देता है।
नियंत्रण का एहसास? हाँ, इसका मतलब है कि अगर मैं सारे नियम मानूं तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है ना?
सटीक रूप से। जॉब के दोस्त असल में जॉब से ज्यादा खुद को सांत्वना दे रहे थे।
सच में? वो कैसे?
देखिए, अगर वे ये मान लें कि जॉब निर्दोष होते हुए भी कष्ट सह रहा है, तो इसका मतलब है कि कल उनके साथ भी बिना किसी गलती के ऐसा हो सकता है।
और ये विचार सच में भयानक रूप से डरावना है।
बिल्कुल, इसलिए अपने उस सिद्धांत को बचाए रखने के लिए उन्हें जॉब को पापी साबित करना ही था।
लेकिन जॉब कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सिस्टम टूट गया है। वो अदालत की मांग कर रहा है और फिर अंततः ईश्वर का प्रवेश होता है।
और वो प्रवेश बहुत ही नाटकीय है।
हाँ, वॉल्टन बताते हैं कि ईश्वर किसी शांत न्यायाधीश की तरह अदालत में प्रवेश नहीं करते हैं। वो एक बवंडर, एक भयानक तूफान के बीच से बोलते हैं।
प्राचीन साहित्य में बवंडर केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह एक स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर इस पूरी बहस से, इस पूरी स्थिति से गहरे रूप से अप्रसन्न है।
तूफान की वो छवि बहुत कुछ कहती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका लगता है।
कौन सा झटका?
देखिए, ईश्वर आ गए हैं, जॉब सामने खड़ा है, उसकी बेगुनाही की अपील हवा में है, और ईश्वर उस अपील का कोई जवाब ही नहीं देते। वे जॉब के तर्कों का खंडन नहीं करते, वे उसे पापी साबित नहीं करते, वे अपने स्वयं के न्याय का बचाव भी नहीं करते।
ये सच में हैरान करने वाला है।
मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप अदालत में जज के सामने अपने निर्दोष होने की गुहार लगा रहे हैं, अपने सारे सबूत टेबल पर रख रहे हैं, और जज आपके केस की फाइल को किनारे सरकाकर अचानक से क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर देने लगे।
कमाल की उपमा है,
है ना?
अगर पूरी बहस न्याय पर थी तो ईश्वर न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ईश्वर उस पूरी धारणा को ही सिरे से खारिज कर रहे हैं जिस पर वो अदालत खड़ी की गई थी। न्याय के बारे में बात ना करके ईश्वर ये दिखा रहे हैं कि वो प्रतिफल का सिद्धांत, ब्रह्मांड को चलाने का मुख्य नियम है ही नहीं।
मतलब वो पूरी नींव ही गलत थी।
बिल्कुल, जॉब और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी दुनिया का निर्माण उसी गलत आधार पर किया था। ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया एक साधारण वेंडिंग मशीन की तरह काम नहीं करती।
वेंडिंग मशीन?
हाँ, जहाँ आप अच्छाई का सिक्का डाले और सुख बाहर आ जाए।
ये एक बहुत ही अस्थिर कर देने वाला विचार है। अगर ब्रह्मांड एक वेंडिंग मशीन नहीं है, अगर सब कुछ न्याय और सजा के साधारण नियम पर नहीं चल रहा है, तो फिर ये चल कैसे रहा है?
इसी को समझने के लिए वॉल्टन हमें प्राचीन दुनिया के नजरिए की ओर ले जाते हैं। वे समझाते हैं कि प्राचीन लोग दुनिया को अच्छाई और बुराई के आध्यात्मिक चश्मे से कम देखते थे।
अच्छा, तो फिर वो दुनिया को कैसे देखते थे?
वो उसे व्यवस्था यानी ऑर्डर के चश्मे से ज्यादा देखते थे। ये समझना पूरी कहानी की कुंजी है।
हाँ, व्यवस्था से आपका क्या मतलब है?
देखिए, आधुनिक इंसान अक्सर भौतिक अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन प्राचीन लोगों के लिए किसी भी चीज का अस्तित्व तब तक मायने नहीं रखता था जब तक कि उसका कोई उद्देश्य या फंक्शन ना हो।
मतलब उसका काम क्या है?
हाँ, जब चीजें अपने सही उद्देश्य के साथ काम करती हैं तो उसे व्यवस्था माना जाता था।
हाँ, मुझे याद आ रहा है, वॉल्टन प्राचीन मिस्र के मात के विचार का उल्लेख करते हैं।
बिल्कुल सही, मिस्र में मात का अर्थ था ब्रह्मांडीय संतुलन। ये केवल न्याय नहीं था, ये पूरी दुनिया का सुचारू रूप से चलना था।
जैसे सूरज का समय पर उगना या नदियों में पानी आना।
एकदम, और समाज में स्थिरता। प्राचीन दुनिया में ये व्यवस्था एक बहुत ही नाजुक बुलबुले की तरह थी। उस बुलबुले के अंदर सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन वे जानते थे कि इस बुलबुले के बाहर एक विशाल नियंत्रण से बाहर की दुनिया है।
यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए वॉल्टन तीन बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक श्रेणियों को सामने रखते हैं, व्यवस्था, अव्यवस्था और विकृति। व्यवस्था तो वो है जहाँ उद्देश्य है, लेकिन जो दूसरा शब्द है अव्यवस्था या नॉन ऑर्डर, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी व्यवस्थित नहीं है वो बुरा है,
लेकिन वॉल्टन कहते हैं कि अव्यवस्था कोई बुरी चीज नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। मुझे स्रोत से वॉल्टन की नए घर में शिफ्ट होने वाली उपमा बहुत पसंद आई।
हाँ, वो बहुत ही सटीक है।
मतलब जब कोई नए घर में जाता है तो चारों तरफ गत्ते के बिना खुले हुए बक्से रखे होते हैं, कमरे में सामान बिखरा होता है, ये अव्यवस्था है। लेकिन क्या वे बिना खुले बक्से कोई बुरी आत्मा है?
नहीं, वो बस बक्से हैं।
बिल्कुल, क्या वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एकदम नहीं, वे केवल ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी तक उनके सही उद्देश्य या सही जगह पर नहीं रखा गया है।
और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो प्राचीन लोगों के लिए गहरा समुद्र या बीहड़ जंगल ऐसी ही अव्यवस्था के प्रतीक थे। वो बुरे नहीं थे, वे बस अभी तक व्यवस्थित नहीं किए गए थे।
तो फिर उस समय इंसान की भूमिका क्या मानी जाती थी?
इंसान को ईश्वर के साथ मिलकर काम करने वाला माना जाता था। उसका काम था उन बक्सों को खोलना,
मतलब उस अव्यवस्था को धीरे धीरे व्यवस्था में बदलना।
एकदम सही, और यहीं से तीसरा शब्द विकृति या डिसऑर्डर सामने आता है।
जो कि असली समस्या है।
हाँ, अव्यवस्था न्यूट्रल है, लेकिन विकृति स्वाभाविक रूप से दुर्भावनापूर्ण है। ये वो है जो उस नए घर में आग लगा देता है। ये स्थापित व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास है।
तो अगर हम इस पूरी वैचारिक रूपरेखा को वापस जॉब की कहानी पर लागू करें तो एक बहुत ही गहरा रहस्य खुलता है ना?
बिल्कुल, जॉब के जीवन में भयानक घटनाएं घटी। उसने अपने जीवन की इस भयानक अव्यवस्था को देखा और तुरंत मान लिया कि ये विकृति है।
यही तो बात है, समस्या यह है कि जॉब ने सोचा कि उसके जीवन का हर दुख, जो कि अव्यवस्था थी, किसी बुराई या विकृति का परिणाम था। उसने मान लिया कि हर अव्यवस्था किसी पाप की सजा है।
हाँ, उसने उन बिना खुले बक्सों को राक्षस मान लिया था। उसने मान लिया कि ईश्वर ने उसके खिलाफ किसी अपराध के लिए सेना भेज दी है।
और हम इंसान आज भी तो यही करते हैं। जब भी जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका हम कारण नहीं समझ पाते, हम उसे किसी न किसी रूप में सजा या अन्याय मान लेते हैं।
सही कहा, हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे कामों का सीधा परिणाम ना हो।
और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ईश्वर जॉब को ब्रह्मांड की एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो इंसानी सोच के बहुत परे है। मतलब अध्याय 38 में ईश्वर जो सवाल पूछते हैं वो कमाल है।
हाँ, वे लगातार सवाल पूछते हैं, जैसे जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब तुम कहाँ थे,
और वो प्रकाश के निवास स्थान और बर्फ तथा ओलों के भंडार के बारे में पूछते हैं। ईश्वर कहते हैं कि इन ओलों को संकट के समय के लिए रखा गया है।
और यहाँ ईश्वर व्यंग का भी इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, ये हिस्सा पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे ईश्वर बहुत तीखा व्यंग कर रहे हैं। वे जॉब से कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम ये सब जानते होगे क्योंकि तुम तो बहुत पहले पैदा हो गए थे।
ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में।
मैं भी यही सोच रही थी। एक पल के लिए ये अजीब लगता है कि ब्रह्मांड का निर्माता एक इंसान पर इस तरह तंज क्यों कस रहा है।
लेकिन वॉल्टन इसे बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट करते हैं। ये व्यंग ईश्वर के वास्तविक स्वभाव का प्रदर्शन नहीं है, ये एक साहित्यिक रचना है,
एक उपकरण की तरह।
हाँ, जिसका उपयोग ग्रंथ का लेखक मानवीय अहंकार की बेरुखी को उजागर करने के लिए कर रहा है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि वो सब कुछ समझता है, और ये व्यंग उस खोखले आत्मविश्वास को एक सुई की तरह चुभता है,
ताकि जॉब को उसकी अज्ञानता का एहसास हो सके।
बिल्कुल, ये जॉब को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाने के लिए है कि उसका दृष्टिकोण कितना संकुचित है।
और उस संकुचित दृष्टिकोण को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ईश्वर बारिश का उदाहरण देते हैं, अध्याय 38 की 25वीं आयत में।
रेगिस्तान में बारिश।
हाँ, ईश्वर उस बारिश का वर्णन करते हैं जो एक बंजर रेगिस्तान में होती है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ये सुनने में एक बहुत ही साधारण प्राकृतिक घटना लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके गहरे अर्थ में जाएं, तो ये उस पूरे प्रतिफल के सिद्धांत को जड़ से उखाड़ फेंकती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव केंद्रित दृष्टिकोण से बारिश का केवल एक ही अर्थ होता है,
केशी और भोजन, है ना?
हाँ, अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर उसे इनाम के रूप में सही समय पर बारिश देते हैं, और अगर इंसान पाप करता है तो ईश्वर बारिश रोककर सूखा ला देते हैं या बाढ़ ले आते हैं।
दोनों ही स्थितियों में बारिश पूरी तरह से इंसानी न्याय के तराजू से जुड़ी हुई है।
बिल्कुल।
तो इस सब का असल मकरक क्या है? रेगिस्तान में क्या हो रहा है? वहाँ तो कोई इंसान है ही नहीं,
कोई भी नहीं,
न कोई ऐसा है जिसने अच्छे कर्म किए हों जिसे इनाम के रूप में फसल दी जाए, और न कोई ऐसा पापी है जिसे सूखे की सजा दी जाए, फिर भी वहाँ बारिश हो रही है। अगर दुनिया केवल इंसानों को सजा देने या इनाम देने के लिए बनी है, तो उस रेगिस्तान में होने वाली बारिश पूरी तरह से तर्कहीन है।
ये तो न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह निरर्थक साबित कर देती है।
एग्जैक्ट, ये तो पूरी थ्योरी को ही पलट देता है।
रेगिस्तान में बारिश ये साबित करती है कि ब्रह्मांड केवल इंसान के इनाम और सजा वाले न्याय तंत्र पर नहीं चलता। ईश्वर के पास बारिश के अन्य उद्देश्य भी हैं जो मानवीय न्याय के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं।
मतलब ब्रह्मांड केवल मानव जाति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, दुनिया की हर घटना केवल हमें सबक सिखाने के लिए नहीं घटती।
सही कहा, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व और व्यवस्था है जो इतनी विशाल और जटिल है कि इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से उसे पूरी तरह कभी नहीं समझ सकता।
ये विचार सच में आजाद करने वाला है। ये हमें उस भारी बोझ से मुक्त कर देता है कि हमारे जीवन का हर दुख हमारी ही किसी गलती की सजा है। तो जब ये विशाल ब्रह्मांड जॉब के सामने खुलता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है?
अध्याय 40 के आरंभ में जॉब अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वह अपनी अज्ञानता स्वीकार करता है और कहता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसका सारा अहंकार ढह जाता है।
लेकिन एक सेकंड, अगर अपनी अज्ञानता को मान लेना ही मंजिल है तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ ये जान लेना कि हम कुछ नहीं जानते एक तरह से खालीपन का एहसास कराता है। क्या सिर्फ अपनी अज्ञानता का रोना रोना ही इस ग्रंथ का अंतिम लक्ष्य है? तो फिर सही दिशा क्या है?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वॉल्टन इस बात पर जोर देते हैं कि केवल अज्ञानता को स्वीकार करना इस किताब का लक्ष्य नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है।
तो फिर असली लक्ष्य क्या है?
अज्ञानता को स्वीकार करना सीखने की शुरुआत है, अंत नहीं। किताब का असली लक्ष्य दुनिया की व्यवस्था और ईश्वर की नीतियों के बारे में एक मजबूत धारणा विकसित करना है।
मतलब हमें ईश्वर के काम करने के तरीके पर विश्वास करना सीखना होगा।
बिल्कुल, भले ही वह हमारी न्याय की संकीर्ण परिभाषा में फिट न बैठे। जॉब ने ईश्वर के बारे में गलत बोला था और ईश्वर उसे सुधारने वाले हैं।
हाँ, और जिसके लिए अगले भाग में बेहेमोथ और लेवियाथान नामक जीवों का परिचय दिया जाएगा, है ना?
एकदम सही। वे जीव उसी अव्यवस्था और ब्रह्मांड की बेकाबू शक्ति के प्रतीक हैं, जिन्हें केवल ईश्वर ही नियंत्रित कर सकते हैं।
तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल जगह है। हर घटना को इंसान के कर्मों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता।
और अव्यवस्था हमेशा बुरी नहीं होती।
बिल्कुल, ये सिर्फ वो हिस्सा है जिसे समझना या व्यवस्थित करना बाकी है। आज की हमारी इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ।
हाँ, बताइए।
अपने जीवन में होने वाली उन घटनाओं के बारे में सोचें जिन्हें आप अन्याय या सजा मानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो महज रेगिस्तान में होने वाली बारिश हो?
बहुत ही गहरी बात है।
एक ऐसी विशाल, सुंदर और रहस्यमयी व्यवस्था का हिस्सा जिसका आपके व्यक्तिगत इनाम या सजा से कोई लेना देना ना हो, बल्कि वो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हो। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।